رات کلاس چل رہا تھا، 30/3/1967، 8th پیج کے مدھیانت میں بات چل رہی تھی، بابا آ کر کے سمجھانے دیتے ہیں، گھر کو یاد کرو، کس کو سمجھانے دیتے ہیں؟ بچے مانے آتمک اسٹیج میں رہنے والے بچوں کو سمجھانے دیتے ہیں کہ مجھے یاد کرو، منا آتماؤں کے باپ کو یاد کرو، یاد کریں گے آتماؤں کے باپ کو یاد کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں ہے؟ تو نراکاری ورثہ لینے والا اچھا نہیں ہے؟ نراکاری ورثہ لینے والا بھی تو اچھا ہی ہوگا نا، تو اچھا نہیں بننا ہے؟ اچھا بننا ہے نا، تو نراکاری ورثہ جو اکھوٹ گیان کا بھنڈار نراکاری ورثہ ہے وہ لینے والا بچہ باپ کا بچہ ہوگا نا، جیسا باپ ویسا بچہ، باپ تو دے ابھیمانی نہیں ہے، اور جو بچہ ज्ञान का वर्षा लेता है अखूट भंडार लेता है सुप्रीम सोल बाप से सुप्रीमेसी का वर्षा लेता है जिससे बड़ा वर्षा संसार में कोई होता ही नहीं, जिससे बड़ी पवित्रता कोई संसार में होती ही नहीं, जो गीता में भी बोला है नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यही विद्यते, इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। तो जो बड़े से बड़े बाप का वर्षा बड़े से बड़ा वर्षा लेता है वो भी तो बाप का बड़ा बच्चा होगा ना, हिस्ट्री में क्या परंपरा चली आई राजाओं में, ये परंपरा कहां से चली? संगम से ही ये परंपरा किसने चलाई? कौन से बाप ने चलाई? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि देर बाप है, मनुष्य सृष्टि के बाप ने परंपरा चलाई, उससे पहले कोई बाप नहीं हुआ जिसने ये परंपरा शुरू की हो। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है बेहद का बाप तो है, लेकिन उसका भी कोई बाप है या नहीं है? तो उसका जो बाप है उसी ने ये परंपरा चलाई क्या के बच्चों में जो बड़ा बच्चा हो उसको उसकी बड़प्पन के आधार पर, क्योंकि पहले पहले पैदा होता है, पहलौटी के बच्चे के आधार पर उसे वर्षा देते। क्यों देते? क्योंकि लंबे समय की प्योरिटी के आधार पर पैदा होता है। दुनिया में जो प्योरिटी है वो तो देह की प्योरिटी के आधार पर देखा जाता है। देह की पवित्रता, देह का एक ऐसा तत्व है जो सत्व कहा जाता है, जिस सत्व से वर्षा लेने वाली माता क्या कही जाती है? सती कही जाती है। तो वो सत्व का वर्षा जो सती लेती है वो तो साकार हुई, जिसको पार्वती का पूर्व जन्म कहा जाता है। और वेदवाणी में शिव बाप बताते हैं कि तुम सब पार्वतियां हो। नंबर बार सब पार लगाने वाली हो, मना सब माताएं बनती हैं क्या है? सती तो माता होती है ना? नहीं, तो तुम सब पार लगाने वाली हो, माना नरक की दुनिया से पार कहां ले जाने वाली? स्वर्ग में ले जाने वाली हो, क्योंकि तुम माताएं ही जो पहले कन्या होती है, पवित्रता का आगार मानी जाती है, वो कन्या ही स्वर्ग के गेट खुलती है। तो तुम सब नंबर वार पार लगाने वाली हो, नरक से स्वर्ग में ले जाने वाली हो, देह की पवित्रता की आधार। लेकिन देह का बाप तो जो कहा जाता है सभी धर्मों में, आदम एडम आदिदेव, वो भी तो देहवाणी होता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में सबसे जास्ती लंबे समय तक देह धारण करने वाली आत्मा कौन है? तीनों काल में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में सबसे जास्ती देह को धारण करने वाली कौन है? कोई तो होगा। जो है वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो तीनों काल को क्रॉस कर देता है देह धारण करके। माना शिव बाप जब आते हैं उनको टाइटल ही नहीं मिला हुआ है, सच्चाई मिली हुई है कि वो त्रिकालदर्शी है। क्या तीनों काल का ज्ञाता है? तो किसके तीनों कालों को देखकर वो त्रिकालदर्शी बना? अरे इस सृष्टि पर भूत भविष्य वर्तमान जो सृष्टि है उसमें तीनों कालों में जो देह से मौजूद रहने वाली आत्मा है उसी को तो देख करके, तीनों कालों को समझ करके त्रिकालदर्शी बनाना। अगर तीनों कालों में से कुछ कम काल रह जाता, कम समय रह जाता, तो फिर वो त्रिकालदर्शी कहा जाता नहीं कहा जाता। तो जिसके तीनों कालों को देख करके वो त्रिकालदर्शी बनता है, त्रिकालदर्शी बनने पर उसमें तीनों काल का सत्य क्या है वो ताकत आ जाती है सत्य की। कैसे आती है? क्योंकि वो ही एक आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी है। क्योंकि जन्म मरण के चक्र में जो आते हैं वो तो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं, और वो जो आत्माओं का बाप है, आत्माएं अविनाशी हैं, तो आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। अविनाशी बाप तो है लेकिन आत्मा अविनाशी का बाप है, या जिसका पार्ट तीनों कालों में लगातार नहीं चलता, बीच में ही पार्ट विनाश हो जाता है देह का, उनका बाप है? त्रिकालदर्शी बाप है, तीनों काल की सच्चाई को जानने वाला बाप है। तो तीनों काल की सच्चाई को धारण करने की शक्ति तीनों काल में पूरा पार्ट बजाने वाली आत्मा में ही होगी, या तीनों काल में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं नहीं है उनमें होगी? तो उसी को चुनता है। माना आत्माओं में जो लंबे से लंबे समय की आयु वाला है उसी को बड़ा बच्चा कहेंगे। तो जो आत्मिक स्थिति धारण करने वालों में बड़ा बच्चा है और सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उस बड़े बच्चे को चुनता तो है, लेकिन जब चुनता है तो क्या वो आत्मिक स्थिति में 100% स्थित होता है? जब चुनता है तो 100% आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होता, तो क्यों चुन लेता है?
हैं?
क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, जब से इस सृष्टि पर आया तब से लेकर जितने भी 84 के चक्र में आया, देह धारण करके रहा, और देह धारण करने के साथ साथ है उसने पार्ट भी तीनों काल में बजाया, तो उसका दर्शी तो है। त्रिकालदर्शी है या नहीं है? है तो वो जानता है कि इस बच्चे में ही ये असलियत है कि वो बच्चा तीनों काल का पार्ट बजाने वाला सत्य बच्चा है। ये बात गीता में कही गई, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी भी अभाव नहीं होता, और झूठ है तो उसका इस दुनिया में अभाव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक ही आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो इस मनुष्य सृष्टि में अनादि पार्टधारी है, अनंत काल तक पार्टधारी है, और शास्त्रों में भी जिसका गायन है किस रूप में, अरे है कुमारी के रूप में, अरे कुमारी के रूप में गायन है। अरे गीता में तो लिखा है मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। सूर्य कुमार है या कुमारी है, है? सूर्य जो है, जो ज्ञान सूर्य है वो बाप के रूप में मेल है या फीमेल है? तो जो टाइटल देने वाला है सूर्य के मुआफिक, वो सूर्य इस दुनिया में सदैव सबसे डिटैच होके रहने वाला है या अटैच होके रहने वाला है? स्थूल सूर्य, जड़ सूर्य सदा डिटैच रहने वाला है, कभी कोई के साथ कभी भी अटैचमेंट रखने वाला नहीं है। अटैचमेंट वो रखते हैं जिनको देह होती है, देह नहीं तो देह का संग नहीं, देह का संग नहीं तो अटैचमेंट भी नहीं। तो जो असल में ज्ञान सूर्य है वो इस सृष्टि पर आता है तो अपना लकब जिसको देता है उसको बताया गया है इस संसार में सूर्य रघु, रघु माने सूर्य, और बाकी सारी सृष्टि इस सृष्टि के सारे प्राणी मात्र मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे तक भी सभी उसकी संतान हुए। इसकी सूर्य की संतान, क्योंकि इस सृष्टि पर सूर्य की रोशनी जहां जहां है तो वहां वहां संपन्नता हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा सूर्य की रोशनी जहां है वहां संपन्नता हो सकती है, क्योंकि सूर्य ही ऐसी शक्ति है जो सब प्रकार की कमजोरियों को दूर करने वाली है, सब प्रकार की गंदगी को सोखने वाला है, सब प्रकार की बीमारियों को खत्म करने वाला है। इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग में बीमारियां नहीं होती। क्यों बीमारियां नहीं होती? क्योंकि वहां सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं, सदा दिन ही दिन रहता है। सूर्य अस्त होता नहीं इसलिए बीमारियां भी होती नहीं। तो जो ज्ञान सूर्य है असल में वो तो है जन्म मरण के चक्र से न्यारा, और जो इस जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो उसी में प्रवेश करता है जो इस तीनों काल के चक्र को क्रॉस करने वाला है। कैसा है? कलातीत, कल्याण, कल्पांतकारी, कल्प का अंत करने वाला है। कल्प का अंत होता है तो उसका स्वयं अंत होता है या नहीं होता है? हैं? क्या
उसका अंत कोई देख ही नहीं
सकता? उसका अंत होता ही नहीं। अगर उसका अंत हो जाए तो जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है उसके पहले पत्ते कृष्ण को जन्म कौन देगा? ऊपर से अपने आप टपकेगा क्या? कोई जन्मदाता होगा ना, जो देन जाता होगा वो देहधारी होगा ना, है? देहधारी होगा तो 16 कला संपूर्ण देहधारी को जन्म देगा। हाँ, सोलह कला संपूर्ण देवताओं को देवता बनाने वाला कौन? नारायण सोलह कला संपूर्ण। नारायण को नर से नारायण किसने बनाया है? तो जिसने बनाया वो कलातीत तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कलाओं से परे होना चाहिए, उसको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। और बच्चा बाप से कम शक्ति वाला होगा या बाप से ज्यादा शक्ति वाला होगा? जो कृष्ण से पहले की सीढ़ी है, पहले की पीढ़ी है, वो तो ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए ना। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो अटैच होने वाली आत्माएं हैं, जिनका प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होने वाली जो आत्माएं हैं, वो सारी की सारी आत्माएं कितने ग्रहों से प्रभावित होती हैं? हैं? नौ ग्रहों से प्रभावित होती है। उन नौ ग्रहों में एक है नक्षत्र, स्वयं प्रकाशित, और बाकी सब नक्षत्र अर्थात सूर्य से प्रकाशित, वो तो जड़ है, वो जो ग्रह के रूप में दिखाए जाते हैं आठ ग्रह, और नौवा नक्षत्र है सूर्य, वो तो जड़ है। लेकिन चैतन्य जो ज्ञान सूर्य है और जो ग्रह है चैतन्य, वो भी नौ है, वो दोनों मिलाकर नौ हैं। नौ में आठ वसु कहे गए गीता में, वही दुनिया में जो साकार और निराकार भगवान को मानने वाले जो आत्माएं हैं बीज रूप, या उन बीजों के भी पूर्वज, जब माने जन्म लेने वाले, पूर्व माने पहले ही जन्म लेने वाले, तो वो पूर्वज आत्माएं भी उन्हीं जड़ ग्रहों की तरह हैं, जिनका प्रभाव सारी सृष्टि पर पड़ता है, सारी सृष्टि की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं खास, ग्रहों से प्रभावित होती है। कोई पर सूर्य की दशा, ज्योतिषी लोग बताते हैं ना, कोई पे मंगल की दशा, कोई पे चंद्रमा की दशा, दशा बैठती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कभी कोई आत्मा सूर्य से प्रभावित हो जाती है, ज्ञान सूर्य से। वो कौन सा ज्ञान सूर्य है जिससे प्रभावित हो जाती है? एक सूर्य तो वो है जो कभी अटैचमेंट में नहीं आता, सदा निर्मोही, मोह अंधकार में कभी डूबता ही नहीं, सदा प्रकाशित है। और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सूर्य का टाइटल धारण करने वाला असली ज्ञान सूर्य से ज्ञान लेकर के, ज्ञान प्रकाश लेकर के सूर्य बनने वाला जिसे पहले पहले इसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्ञान मिलता है वो ज्ञान सूर्य सभी ग्रहों को प्रभावित करने वाला है या नहीं है। और जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होता है कि नहीं, टोटल अंधकार में ढक जाता है तो किस आधार पर अंधेरे में ढक जाता है? अंधकार माना कालेपन से ढक जाता है। जब बाकी आठों ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, क्या आठ में से एक तो है वैल्यूलेस, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, दूसरों की वैल्यू नापने के लिए वो रखा गया है। तो जो सात हैं वो भी वास्तव में सात रंग माने जाते हैं दुनिया में। सातों रंगों को इकट्ठा मिला दो तो कौन सा रंग बनेगा? काला रंग बन जाएगा। तो सातों से जब प्रभावित हो जाता है, आठ में से तो प्रभावित होने की कोई बात ही नहीं, तो वैल्यूलेस, ताकत नहीं। तो सातों से जब प्रभावित हो जाता है तो एकदम काला बन जाता है। कौन? जैसे धरती के सितारे हैं वैसे धरती का चंद्रमा भी है, वैसे धरती का सूर्य भी है। तो वो धरती का सूर्य जो है वो एकदम प्रभाव से प्रभावित होकर के काला पड़ जाता। काला पड़ जाना माना अंधकार में डूब जाना। कौन कौन सा अंधकार? कामांध, क्रोधांध, लोभांध, मोहांध, ये सब अंधकार फैलाने वाले हैं ना, विकार। इन विकारों से ऐसा जड़जड़ीभूत हो जाता है जैसे नवरत्न है ना, नवरत्न जो है वो नंबरवार प्रकाशित होने वाले हैं या एक जैसे प्रकाशित होने वाले हैं? नौ पत्थर हैं या नहीं है? है, नौ पत्थर है ना, तो उनमें सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि कौन बनता होगा और सबसे जास्ती पारस बुद्धि भी कौन बनता होगा? उसको कहते हैं ऐसा काला तमो प्रधान पत्थर जिसे कहा जाता है ग्रेनाइट, सबसे कड़ा पत्थर। और उसके मुकाबले है, अरे हीरा भी तो पत्थर ही होता है, नहीं होता? वो भी पत्थर होता है। तो हीरा जो हीरो पार्ट धारी कहा जाता है वो भी इस दुनिया में आकर एक टाइम ऐसा जरूर आता है, क्या बन जाता? टोटल पत्थर बुद्धि बन जाता औरों के मुकाबले। इस दुनिया में पत्थर बुद्धियों का भी बाप क्या बन जाता? पत्थर बुद्धि बन जाता। ये पत्थर बुद्धि का क्या मतलब है? आत्मा चैतन्य है या पत्थर है? है? चैतन्य आत्मा है, लेकिन चैतन्य आत्मा देह का जब जन्म लेती है, पांच तत्वों वाली देह है, तो जन्म लेते लेते शक्ति छीन होती है या नहीं होती है, है? जन्म लेते लेते आत्मा की शक्ति छीन होती है। कैसे छीन होती है? पहला पत्ता कृष्ण है या नहीं है? वो कृष्ण वाली आत्मा जो सत्युग के आदि में 16 कला संपूर्ण थी, वो कृष्ण चंद्रमा, कृष्ण चंद्र कलाहीन कैसे बनता है? जन्म लेते लेते किसके संग करेंगे? पहले जन्म में किसके संग का रंग लगा है? है? सृष्टि का संग का रंग लगा। हाँ, जो देह का अंग है, भले ज्ञानेन्द्रियां श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानेन्द्रियों में भी सबसे श्रेष्ठ अंग आंख। उस आंख का संग का रंग लेने वाली सतयुग की पहली पीढ़ी है राधा कृष्ण जैसी आत्मा। लेकिन आंख भी तो देह का अंग है या नहीं? और देह जड़ तत्वों से तैयार होती है या चैतन्यता होती है? जड़ तो से तैयार होती है। तो बाबा ने मिसाल दिया, कोई समझता है, कहता है मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। ऐसे कहते कहते एक टाइम ऐसा आता है कि वो यही समझ बैठता है कि मैं भैंस हूं, खिड़की से कैसे निकलूं? तो ऐसे ही है, संग के रंग में आते आते हर आत्मा नीचे गिरती है, देवात्माएं भी नीचे गिरती है, लेकिन वो धीमी गति से गिरती है। क्या? क्योंकि आंख सूक्ष्म है, सूक्ष्म अंग वाली। इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां सूक्ष्म है या स्थूल है? सूक्ष्म। और उन ज्ञानेन्द्रियों में भी सबसे जास्ती सूक्ष्म आंख है। और आंख से देखने का असर, पहला असर और आखिरी असर और सबसे जास्ती असर आंख का ही पड़ता है। क्या? आंख जो है वो पहला असर डालने वाली, और आदि जो आदि सो अंत हो जाता है। तो दृष्टि का संग से नीचे गिरते गिरते दूसरी इंद्रियों तक आते आते जब कर्मेंद्रियों तक उतरते हैं द्वापर युग में, कहां उतरते हैं? द्वैतवादी युग में, जहां से मुख्य इंद्रिय कौन सी शुरू होती? काम इंद्रिय। तो वहां एक इधर गई टांग और एक इधर गई, द्वैतवाद शुरू हो गया। रास्ते अलग अलग हो गए, जैसे गाड़ी में दायां बैल बायां बैल अलग अलग हो जाते हैं, उनकी अलग अलग निशानियां हैं मोड़ने की। दाएं हाथ के बैल को कहते हैं आ आ आ, और बाएं हाथ के बैल को क्या कहते हैं? टिक 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 कहते हैं ना, बहुत टिक टिक करता है। क्या मतलब है? फालतू बहुत बोलता है, असलियत नहीं। तो ऐसे ही ये द्वैतवाद शुरू हो जाता है, द्वैतवाद में जो भी दूसरे दूसरे धर्म पिताए आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म फैलाते हैं और उन धर्मों के आधार पर जो कर्म किए जाते हैं, अनेक प्रकार के अलग अलग कर्मकांड, उन कर्मकांडों के आधार पर सब धर्म आले आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मुसलमान कहेंगे शरीर छोड़ने के बाद जमीन दोज करना वो अच्छा है, यही धर्म की बात है। हिंदू कहेंगे नहीं, जलाना अच्छी बात। पारसी कहेंगे न जलाना अच्छी बात, न जमीन दोज करनी अच्छी बात, कहीं तालाब के किनारे, कुएं के किनारे छोड़ दो, समंदर के किनारे छोड़ दो तो मछलियां खा जाएंगी, कुछ काम आ जाएगा। मना जितने जितने धर्म उतनी उतनी बातें, और फिर उन धर्मों में से भी शाखाएं निकलती हैं, तो तुंडे तुंडे मतर भिन्ना दुनिया में होता रहता है। इस शरीर का मिसाल दिया गया क्योंकि भगवान जिस तन में प्रवेश करता है वो तन भी विराट रूप धारण करता है। गीता में भगवान का विराट रूप दिखाया गया ना, है? वो विराट रूप कौन सी आत्मा के पार्ट का सूचक है? कौन सी आत्मा का विराट रूप है? मनुष्य सृष्टि का पिता ही सारी सृष्टि में चक्र लगाता है, तो अंत में जाकर के उसके 500-700 करोड़ बच्चे सृष्टि के अंत में सृष्टि विराट रूप धारण कर लेती है। इसलिए उस विराट रूप में देवताएं भी दिखाए हैं, मनुष्य भी दिखाए हैं, ऋषि मुनि भी दिखाए हैं, राक्षस भी दिखाए हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे जो भी प्राणी मात्र हैं, उस विराट रूप में सब कुछ दिखाया हुआ है। तो विराट रूप किसका है? कौन सी आत्मा का विराट रूप है? है? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप पिता का विराट रूप है। वो विराट रूप वास्तव में जो परमेश्वर है, परम पिता है, जो असली भगवान है। क्या भगवान असली कैसे? असली भाग्यवान है। असली भाग्यवान कैसे? कभी भी देह के बंधन में नहीं आता, कभी भी दुख के बंधन में नहीं आता। तो भाग्यवान है या नहीं है? जो देह के बंधन में आते हैं, जो दुख के बंधन में आते हैं, उनको छुड़ाने वाला मूल आत्मा कौन है? है? कहेंगे मनुष्य सृष्टि का बाप। अरे वो तो खुद ही बंधन में आता है, वो कैसे छुड़ाएगा? तो मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं, वो नहीं है परम पुरुष। परम पुरुष वो है जो सब पुरुष रूपी आत्माओं को बंधन से छुड़ाने वाला है, देह के बंधन से भी छुड़ाने वाला है। वो कौन है? वो कभी भी देहधारी नहीं बनता, देह को धारण करता है लेकिन देह में आसक्त नहीं होता, माना देह के अधीन नहीं होता। और जितने प्राणी मात्र हैं वो सब देह के अधीन जरूर हो जाते हैं, आज नहीं तो कल। स्वर्ग में आदि नहीं होते तो द्वापर से द्वैतवादी युग में आकर के अधीन होने लगते। मतलब कि जो भी आत्मा रूपी पुरुष हैं, पुरु माने शरीर, कानपुर, पुरु माने जहां रहने का स्थान हो, पुरी माने जगन्नाथपुरी, तो रहने का स्थान का नाम है ना, शहर का नाम, तो पुरु माने रहने का स्थान। तो ये शरीर है पुरु और उसमें ये आत्मा है श, पुरु श, शयन करने वाली आत्मा रूपी जो रहने वाला है वो शरीर रूपी पुरु में रहने वाला है और चाहे तो आराम से शयन करे। क्या चाहे, क्या चाहे, कोई भी आत्मा क्या चाहती है इस संसार में, हैं? सुख चाहती है, लेकिन सुख चाहने के लिए भी चाहने मात्र से मिल जाएगा या इतनी बलवती इच्छा हो, 100% इच्छा कि वो चीज प्राप्त करके ही छोड़े, ऐसी चाहना और संपूर्ण सुख प्राप्त करे, ऐसा नहीं अभी सुखी है तो अभी दुखी हो, आज सुखी है कल दुखी हो जाए, नहीं, कैसा सुख, संपूर्ण सुख। फिर कहेंगे संपूर्ण सुख तो देह के बिना तो होता नहीं, देह की इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है, देह की इंद्रियों से ही दुख भोगा जाता है, तो देह के बंधन में आना पड़े, आना पड़े या नहीं है, तो ये भी तो बंधन हो गया। क्या देह के बंधन में आना मना, बस पकड़ गए तो पकड़ गए। शिव सुप्रीम सोल देह के बंधन में नहीं आता तो कभी पकड़ में, देह के पांच तत्वों की पकड़ में भी नहीं आता, तो फिर वो ऐसी क्या चाहना करे, ऐसी क्या इच्छा करे कि सुख तो मिले लेकिन देह का बंधन न हो, हो सकता है, है? हो सकता है कि देह न हो, बिना देह के नहीं सुख मिल सकता, बोलो भाई, भाई लोग तो कहते हैं बिना देह के सुख नहीं मिल सकता, इनका तो देह अहंकार अति का हो गया, बाबा ने टाइटल भी दे दिया दुर्योधन दुशासन, माताएं कन्याएं क्या कहती है, हैं? ऐसी कोई स्टेज है कि देह का भान ही न रहे, देह रहे रहे न रहे, आंख है न है तो भी ठीक, आंख है जैसे है ही नहीं, कान है जैसे है ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं, ऐसी स्टेज आत्मा की बन सकती है या नहीं बन सकती? तो हमारे भारत में एक यादगार बनी हुई है, परंतु उस यादगार को लोग जानते नहीं है, ये क्या चीज है, क्या है, कैसे है ये यादगार, इसका अर्थ क्या है, बस पूजा कर रहे हैं अंधश्रद्धा से, बिना जाने बिना समझे बस पूजा करते जा रहे हैं। तो अज्ञान अंधकार हो गया ना, इस बात का अज्ञान अंधकार है, इस बात का अज्ञान अंधकार कि हम जो हैं या कोई भी प्राणी मात्र इस संसार में है, मनुष्य तो समझदार है, बुद्धि वाला है, उसे जल्दी समझना चाहिए कि हम सभी मनुष्य मात्र दो तत्वों से बने हैं, एक आत्मा और एक शरीर। तो आत्मा साकार निराकार और शरीर साकार, दोनों के कॉम्बिनेशन से इस शरीर में प्राणी मात्र अपना कार्य कर रहे हैं। तो उन सभी प्राणियों मात्र का कोई बीज होगा या नहीं होगा, कोई बाप होगा या नहीं होगा, सभी प्राणियों का आदि कोई होगा या नहीं होगा, और सभी प्राणी मात्र का अंत कोई होगा या नहीं होगा। जिसके आदि को कोई नहीं जानता, जिसके अंत को भी कोई नहीं जानता, हाँ वो स्वयं जो आदि है और जो अंत है, अथवा जो अनादि है अनंत है, वो स्वयं ही स्वयं को जान सकता है, दूसरा कोई उसको पहचान नहीं दे सकता। तो जो स्वयं ही स्वयं को जान सकता है, वो जानने वाला सदैव चैतन्य है या जड़त्व में भी बन जाता है, चैतन्य बुद्धि ही रहता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, या जड़त्व में पत्थर बुद्धि भी बन जाता है, है? कैसे बनता है? कारण क्या है जो पत्थर बुद्धि बन जाता है? वो तो मालूम हो गया कि संघ के रंग से पत्थर बुद्धि बनते हैं, बनते हैं, चलो मान लिया। लेकिन वो पत्थर बनने का प्रोसीजर क्या है? आत्मिक स्थिति तो द्वापर युग से ही भूलने लगती है। तो लेकिन पत्थर बुद्धि तो नहीं थे ऋषि मुनि, देवान में थे देवताएं, तब तो देह का सुख भोग रहे थे, देवान में नहीं थे, थे तो, लेकिन इतना कम कहें कि स्लाइटली बहुत कम देहभान, अंश मात्र देहभान था। लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से देहभान बढ़ गया, और बढ़ जाने का कारण हुआ एक को भूल गए और दूसरा घुस पड़ा। क्या क्या एक को भूल गए? आत्मा को भूल गए और देह ही याद रह गई। देह में भी मृत्यु के टाइम द्वापर युग से जब मृत्यु होना शुरू हुई स्त्री पुरुष की, तो कौन सा अंग याद आने लगा? जिस अंग से जास्ती दुख भोगना शुरू किया द्वैतवादी द्वापर युग से, वो ही अंग स्त्री को और पुरुष को याद करना लाजमी हो गया, क्योंकि जीवन भर पुरुष ने स्त्री से सुख भोगा, स्त्री ने जीवन भर पुरुष से सुख भोगा। तो वो काम जो है वो अंग में घुस गया। सत्युग त्रेता में किसी अंग में काम की इच्छा नहीं होती थी, कामना की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन द्वापर युग से इच्छा ने प्रवेश कर लिया। काम, काम माने इच्छा, कामना प्रवेश कर गई और काम इंद्रिय से शुरू हुआ, तो सवाल यह है ये कामेंद्रिय से शुरुआत तो किसी ने की होगी कि सभी देवात्माओं ने इकट्ठी शुरुआत कर दी है?
आत्मा जो ऊपर से आ रही है ना, हाँ 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 की आत्मा जैसे
है हाँ,
तो वो फैलाना शुरू कर देती है काम बेकार।
अच्छा ऐसे है
जो पिता से जब नीचे गिरते आ रहे हैं ना, वास्तविक लड़ाई कब होती है?
हाँ वो आरंभ करती है। अगर इब्राहिम की आत्मा ऊपर से आती है और वो काम विकार आरंभ कर देती है, तो जो आदि करने वाला है वो ही अंत करने वाला होना चाहिए। तो क्या इब्राहिम अंत करता है काम विकार का? इस मनुष्य सृष्टि में जो इस्लाम धर्म का बीज है वो काम वासना का अंत करने वाला है। राजयोग से काम जीते जगत जीत बनता है, बनता है नहीं बनता? तो फिर वो होना चाहिए जो काम जीते जगत जीत बने, वो ही होना चाहिए आदि करने वाला और वो ही होना चाहिए अंत करने वाला। तो कैसे? हम भारतवासियों की तो सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये भारत मात्र देश है। कैसा देश है? मात्र देश है। और माताएं कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आएगा, कान में कुछ बातें डालने लगेगा तो सुनते सुनते प्रभावित हो जाती है। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। इब्राहिम ऊपर से आया, द्वैतवादी धर्म फैलाने वाला, उसने अपनी बातें सुनाना शुरू कर दी। बस भारत की माताएं, भारतवासी सब कन्वर्ट हो गए इस्लाम धर्म। सब तो नहीं लेकिन ज्यादा प्रतिशत कन्वर्ट हुए। तो झगड़ा हो गया, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लिया, इस्लामी अरब देश की तरफ भगा दिए गए, भारतवासी भारत में रह गए। अलगाव हो गया ना, द्वैतवाद चल गया ना, दो राज्य हो गए ना। शूटिंग भी होती है। ब्रह्मा बाबा जब तक रहे तब तक माउंट आबू से सारे इंडिया का संचालन होता था, हर सेवा केंद्र का। जिस दिन से शरीर छोड़ा उसी दिन से उन देहधारी धर्मगुरुओं की बुद्धि में बात आ गई, अब हम क्या करें, किसका आधार लेकर चलें, किस पर विश्वास करें? तो बस झगड़ा शुरू हो गया, अपने अपने प्रोविंस अलग अलग कर लिए। 69 में ही गुजरात का जोनल इंचार्ज, यूपी का जोनल इंचार्ज, गुजरात का जोनल इंचार्ज, ये सब इंचार्जेस बट गए। झगड़ा हुआ ना, कोई बात को लेकर झगड़ा होता है ना, तो सत्य असत्य का युद्ध वहीं से ही शुरू हो गया। तो पहला धर्मगुरु कौन सा साबित हुआ? जिस धर्म पिता के रहते रहते विघटन नहीं हुआ और वो गया तो विघटन शुरू। उसको फॉलो करने वाले जो भी देहधारी धर्मगुरु गद्दी नशीन बने, उनमें झगड़ा होने लगा अपनी अपनी गद्दी के लिए। ऐसे ही द्वापर युग से जब द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, तो जब तक वो धर्म पिताएं जीवन में रहते हैं अपने धर्म का उत्थान करते हैं, और जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा उनकी गद्दी पर आसीन होने वाले गद्दी नशीन आपस में हमको मिलनी चाहिए झगड़े, हमको गद्दी मिलनी चाहिए, हमको गद्दी मिलनी चाहिए, इनको कैसे मिल गई, बस झगड़ा शुरू। तो ये गुरुडम की परंपरा द्वापर युग से शुरू होती है, द्वैतवादी युग से, वहीं से शुरू होती है जहां से ये काम विकार शुरू होता है, जहां से ये दो टांगे अलग अलग हो जाती, द्वैतवाद शुरू हो जाता। तो ये द्वैतवादी द्वापर युग में जो काम विकार का आरंभ हुआ, वो इब्राहिम अगर शुरू नहीं करता है, आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो फिर कौन है? देखो इस बात को हम देवात्माएं नहीं जानते, इस बात की सत्यता को, गहराई को हम देवात्माएं नहीं जानते, लेकिन वो इस्लाम धर्म की, मुसलमान धर्म की आत्माओं में, उनके शास्त्रों में, उनके ग्रंथों में अभी भी लिखा हुआ है कि अल्लाह मियां ने जब जन्नत रची तो आदम और ईव को हिदायत कर दी थी कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना, और लंबा टाइम जब बीत गया जन्नत में सुख भोगते भोगते, तो ईव को चंचलता आई। क्या? पुरुष में नहीं, किस में आई? ईव में। मेल में या फीमेल में? फीमेल में। यही बात तुलसीदास ने लिखी है कि स्त्रियों में इस दुनिया में, दुख की दुनिया में, ये आठ अवगुण जरूर होते हैं, साहस, अनर्थ, चपलता, क्या, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। दया भाव भी लुप्त हो जाता है। तो जो चंचलता है वो प्रकृति का गुण है, फीमेल का, पुरुष का गुण नहीं है। क्या? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं, उनमें एक ही परम पुरुष है। क्या? एक आत्मा परम पुरुष, उससे बड़ा पुरुषत्व धारण करने वाला कोई है ही नहीं, और दूसरी है प्रकृति। उनमें प्रकृति के गुणों में धारण करके चलने वाली आत्माओं के बीच में, जो प्रकृति के पांच तत्वों रूपी शरीर को धारण करती हैं, देह को धारण करती हैं, कोई भी प्राणी मात्र की आत्माएं हों, वो सभी आत्माएं चंचल होती है। मना, उनको मन होता है। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 11वीं मन है, वो मन जरूर होता है चंचलता करने वाला। उन चंचलता करने वाले प्राणियों में, आत्माओं में कोई मुखिया होगा या नहीं होगा? कौन है मुखिया?
ब्रह्मा
है।
ब्रह्मा,
ब्रह्मा से पहले कोई ताकतवर माता ही नहीं थी, दादा लेखराज से पहले यज्ञ में कोई ताकतवर माता नहीं थी जो ब्रह्मा बाबा को भी चलाती थी, थी या नहीं? कौन थी? जगदम्बा है? जगदम्बा आदि में जगदम्बा, अंत में महाकाली। जो आदि में जगदम्बा वो अंत में महाकाली, और महाकाली के मस्तक में कंट्रोल करने वाला चंद्रमा माने ब्रह्मा। बाबा मुरली में पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, तो फालतू पूछते हैं। ब्रह्मा का भी कोई बाप है या नहीं है? है, है? इस सृष्टि पर भी देखी जाए तो पृथ्वी है माता। पृथ्वी क्या है? माता। विडो तो नहीं है, माता तो हमारे यहां पूजनीय है। विडो माता पूजनीय नहीं होती, सदवा माता पूज्य है। तो पिता भी होगता होगा कि नहीं है? तो पिता और माता दोनों का बच्चा उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह है कि उपग्रह है? ग्रह का बच्चा है उपग्रह। तो ऐसे ही चैतन्य सृष्टि में बाप भी है और माता भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या दोनों कैसे हैं? कंबाइंड हैं दिखाई पड़ते। ज्ञान सागर बाप भी और पृथ्वी माता भी, 1/4 पृथ्वी और बाकी सारा है सागर। तो जो पिता है वो है ज्ञान का सागर। क्या है? ज्ञान का सागर। और जो माता है वो देह अभिमान की मिट्टी का पुंज है, वो है जड़ देह अभिमान की मिट्टी का पुंज, है ना? और चैतन्य भी तो कोई है, है? पांच तत्वों का पार्ट बजाने वाली पृथ्वी माता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, इनको देवता का रूप दिया गया है या नहीं दिया गया? तो चैतन्य है या सिर्फ जड़ है? हैं? चैतन्य है। तो गीता में भी दो प्रकार की प्रकृति बताई गई, एक ठेठ जड़ पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और एक है चैतन्य रूप उनका, पृथ्वी माता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता आदि आदि। तो ये जो भी देवताएं हैं वो चैतन्य हैं। ऐसे ही ये पांच जड़ तत्व वाले देवताएं जो हैं वो जड़त्वमय बुद्धि वाले हैं। बुद्धि कैसी है? अन्य देवताओं के मुकाबले जड़त्वमय बुद्धि। तो हम शूटिंग पीरियड में देखें संगम में, वो माता कौन है जो सबकी माता है? उसको कहा जाता है जगतम्बा, जगत की अम्बा। जगत में जो भी प्राणी मात्र है सबकी, सबकी अम्बा। अच्छा, जो पहला ब्राह्मण बनता है, पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य सो पहला शूद्र बनता है, उसकी भी अम्बा है? पहले ब्राह्मण की भी अम्बा, अरे है या नहीं है? जब सारी जगत की अम्बा तो सभी ब्राह्मण मात्र की अम्बा, कैसे? अरे ब्राह्मण कब कहा जाता है? ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण। शिव का बच्चा शैव, विष्णु का बच्चा वैष्णव। मात्रा बढ़ गई फॉलोअर के अर्थ में, बच्चे के अर्थ में। तो बताओ, वो पहला ब्राह्मण जिसको कहते हैं चोटी का ब्राह्मण, जिसकी यादगार में ब्राह्मणों ने सबसे ऊपर क्या दिखाया? चोटी दिखाई। उस चोटी में क्या विशेषता दिखाई है? हाँ, वो याद की ऐसी गांठ बांध ली जिस गांठ में शिवलिंग बना हुआ रहता है। तो ऐसा चोटी का ब्राह्मण उसकी भी अम्बा, वो कौन है? कैसे?
हाँ, उस समय वो पहला ब्राह्मण बनता है।
रामबलिया तो पहला ब्राह्मण कैसे बनती है?
जगदम्बा सुनने सुनाने के लिए।
हाँ, कोई आत्मा ने हिम्मत नहीं की। ब्रह्मा के भागीदार से पूछने की कि इन साक्षात्कारों का क्या अर्थ है। भले ब्रह्मा ने जाना तो कि दुनिया में हमारे अनुभव में तो यही आत्मा है ज्यादा अनुभवी, ज्यादा होशियार, और ये विद्वान पंडित आचार्य गुरु ये सब बेकार। लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी, तो उनको पावरफुल कहें या कमजोर कहें, जिनकी हिम्मत नहीं पड़ी है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। अगर बच्चे हिम्मत न करें तो बाप की मदद नहीं मिलेगी, और मदद नहीं मिलेगी तो पावरफुल नहीं बनेगी। तो साबित होता है कि वो जगदम्बा जो निमित्त बनी सुनाने के साक्षात्कारों को, और साक्षात्कारों का जो अर्थ मिला, वो अर्थ भी सुनने के और बाद सुनाने के निमित्त बनी। क्या? उसने साक्षात्कारों को सुना और सुनाया भी, और जिसने सुना, जिसको सुनाया, वो उसके मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण बना। जो पहला ब्राह्मण बना वो ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है, तभी तो ब्राह्मण बना। मुखवंशावली या कुहवंशावली? मुख से सुना तो मुखवंशावली ब्राह्मण हुआ, और जो मुखवंशावली ब्राह्मण हुआ, उस मुखवंशावली ब्राह्मण के लिए कहा गया वही पहला ब्राह्मण सो पहला है ब्राह्मण सो सीधा क्षत्रिय, पहला देवता महादेव। संगम में महादेव कहा जाता है, सतयुग में कृष्ण जैसे बच्चे को पैदा करने वाला, और त्रेता में जाके क्षत्रिय बनता है। तो मनुष्य सृष्टि में अव्वल नंबर वो ही हुआ ना, मनुष्य सारी मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ ना, सबका बाप हुआ। या कोई ये कहेगा मेरा बाप नहीं हुआ है? तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का भी इन धर्म पिताओं का बाप कोई हुआ या नहीं हुआ? उन कोई भी धर्म पिताओं ने अपने को ये नहीं कहा कि मैं आदम हूं। मुसलमानों ने तो खास बोला आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा है उसी का नूर आदम है, लेकिन आदम खुदा नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं आता है। हमको ज्ञान देने के लिए वो खुद आता है या उसे भेजा जाता है? जैसे और पैगंबरों को भेजा गया, धर्म पिताओं को भेजा गया, ऐसे वो किसी का भेजा हुआ हमको ज्ञान सुनाने के लिए आता है, क्लैरिफिकेशन देने के लिए आता है, समझाने देने के लिए आता है, सुप्रीम टीचर के रूप में, या अपने आप आता है, खुद आता है, खुद आता है, खुदा जो प्रजापिता है वो खुद आता है। तो ज्ञान की समझाने देने के लिए हमारे सामने प्रैक्टिकल में कौन आता है? आदम आता है, लेकिन आदम खुदा नहीं। तो जो खुद आता है और आदम को समझाता है, क्या आदम को समझाता है, और वो आदम सृष्टि का आदि पुरुष इस संसार में साबित होता है, वही आदम द्वापर युग आरंभ होने से पहले वो आदम के बच्चे जो देवताएं हैं वो उस रहस्य को नहीं जानते। लेकिन जो काम विकार जहां से शुरू होता है, जिस धर्म से, उस धर्म के फॉलोअर धर्म पिता इस बात को जानते हैं कि मेरे अंदर जो काम विकार आया, वो जिसमें मैंने प्रवेश किया उससे आया, या मैं जब ऊपर से आया था तो मेरी आत्मा में काम विकार था, हैं? कब से आया? जिसका आधार लिया वो अनेक जन्म लेते हुए आ रहा है, तो अनेक जन्मों का सुख भोगते हुए आत्मा आ रही है, तो वो कमजोर हुई ना, तो उस कमजोर आत्मा में ये काम विकार पहले से ही था। लेकिन उसने भी किसी बाप से जन्म लिया ना? नहीं लिया, तो उसके बाप से उसमें आया होगा ना, है? जो उसको जन्म देने वाला उस इस्लाम धर्म का जो बीज होगा, उस बीज से वो इब्राहिम का आधार मूर्त जड़ माता बने इस्लाम धर्म की। तो वो जड़ को पैदा करने वाला कोई बीज था, तो जो बीज था वो इस्लाम धर्म का बीज साबित हुआ, और इस्लाम धर्म का जो बीज है वो क्या पूर्वज है? कि सतयुग का कोई नारायण है, सतयुग में जो जन्म लेने वाले आठ नारायण हैं, वही आठ है ना जो ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं, पूजे जाते हैं कि नहीं है? नौवां है लेकिन वैल्यूलेस। अगर नौ को गिनेंगे भी तो सूर्य को गिन लेंगे, नवग्रहों में एक सूर्य की गिनती होती है कि नहीं, उस सूर्य की या धरती के सूर्य की? धरती के सितारे भी हैं, धरती का चंद्रमा भी है, धरती का सूर्य भी होगा, तो जो धरती का सूर्य है उसको गिन लेते हैं नवग्रहों में, लेकिन वास्तव में वो नौ ग्रहों के अंदर है, लेकिन नक्षत्र है या ग्रह है? वो तो स्वयं प्रकाशित है। इसलिए जो आठ नारायण बचे सतयुग के, उन आठ नारायणों में से जो दूसरा नारायण है वो दूसरे नंबर के धर्म पिता का आधार बनता है, उसको भी जन्म देने वाला संगम युग में बैठा हुआ है बीज, उस बीज को भी परिचय देने वाला जो इस्लाम धर्म का पूर्वज आत्मा है, जो असल सूर्यवंशी है, क्या वो असल सूर्यवंशी अष्ट वसु कहे जाते हैं, अष्ट देव वो है, और उस उन आठ का भी उन आठ का भी कोई बीज है या नहीं? कौन है? हैं? मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो आदम और वो माता ईव दोनों को हिदायत दी कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना, लेकिन बहुत जन्मों के सुख भुगते भुगते ईव वो बात भूल गई, टोटली भूल गई, और ईव का मन चंचल हुआ और उसने क्या किया, आदम को बरगलाना शुरू कर दिया हाव भाव से, और आदम अपने को रोक नहीं सका, तब ही से काम विकार की शुरुआत हो चुकी। तो काम विकार का भी बाप कौन हुआ? काम विकार को भी जन्म देने वाला कौन हुआ बाप? है
आदम।
वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों विकारों का बाप वो ही है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, वो सब का बीज है। अच्छे से अच्छों का भी बीज बाप है और बुरों से बुरों का भी बीज है। तो वो आत्मा जन्मरण के चक्र में नीचे उतरती कि नहीं? जब उतरती है द्वापर युग शुरू होता है, द्वैतवादी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं, तो उन भारत माताओं में से पहली माता कौन है जो पहले पहले प्रभाव में आती है, प्रभावित होने वाली माता है? क्योंकि भारतवासी ही प्रभावित होते हैं, भारत है मातृ देश, और सब देश जो हैं वो पितृ देश कहे जाते हैं और भारत मातृ देश कहा जाता है। वो कौन आत्मा है जहां से ये प्रभावित होने वाली बात शुरू हो गई? जो आदि है वही अंत होगा। तो प्रभावित होने वाला ये आदि आत्मा कौन है? ईव की आत्मा। माता प्रबल होती है या पिता प्रबल होता है? अब तो माता बहुत बता रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांच विकार जो दिखाए जाते हैं चित्रों में, जो बाबा ने बताए पांच विकार पुरुष के, और पांच विकृत रूप धारण करने वाले प्रकृति के, मंदोदरी, ये दस मिलकर के रावण के दस सिर बनते हैं। तो पांच विकारों में जो पहला विकार है वो बीज रूप बाप है या माता है? बाप है। तो आप तो जगदम्बा को बता रहे हैं, किसको बताया?
माताओं में पहल किसने किया?
जगदम्बा पहली माता है। अरे दुनिया का बीज एक है या दो हैं? तो माताओं का भी कोई बीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जिससे पहले कोई भी माता ना हुई हो? शिव बाप आते हैं, बताते हैं कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं, भले दादा लेखराज का तन में प्रवेश किया तो पुरुष तन है या स्त्री चोला है? कौन सा तन है? पुरुष तन है ना, लेकिन काम क्या निकालना है? वो खुद परम पुरुष है, वो तो स्वयं ही कहता है वेदवाणी में। भारत में ये परंपरा है, पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पहली जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेकर तीसरी लेते हैं, चार चार शादियां कर लेते हैं। तो ये परंपरा कहां से शुरू की, किसने शुरू की? शिव बाप ने शुरू की। तो शिव जब आया तो सीधा जगदम्बा में प्रवेश कर लिया है? हाँ। माता मुरली याद रखती है, भाई लोग मुरली भूल जाते हैं। अरे कितना लंबा टाइम हो गया परम ब्रह्म की बात बताते बताते। शास्त्रों में भी बताई है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस परम ब्रह्म गुरु को नमन करता हूं। शिव बाबा ने भी कहा माता गुरु को जरूर मानना पड़ेगा। तो माताओं में वो पहली माता कौन है जो परम ब्रह्म, बड़ी ब्रह्म, बड़ा माता है? तो जैसे शिव दादा लेखराज में आते हैं, कहते हैं मैं इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं, ऐसे ही प्रजापिता में पहले पहले आए और क्या नाम रखा काम निकालने के लिए? ब्रह्मा नाम रखा। तो पहला पहला ब्रह्मा हुआ, बड़े थे बड़ा ब्रह्मा जो सृष्टि रूपी परिवार है परम पिता का, वो रचने के लिए उस परम पिता ने पहली पहली माता परम ब्रह्म कहो वो निर्धारित की काम निकालने के लिए। ये टाइटल क्यों दिया, परम ब्रह्म का टाइटल क्यों दिया? क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर। तो क्या काम किया? अरे माता क्या करती है? सृष्टि की जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी बच्चे हैं, उन सब की पालना करेगी ना, करती है ना। तो नई सृष्टि की पालना करने के लिए जिस तन को निमित्त बनाया, पहले पहले माता बनाया। तो इसलिए मंदिर में जाते हैं शिवलिंग के सामने, तो शिवलिंग एक है या दो हैं? है? अरे शिवलिंग एक है मंदिर में या दो चार हैं? एक है। एक के सामने जाके कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। माता है बड़ा रूप पत्थर, पत्थर बुद्धि। क्या है? पत्थर बुद्धि माता है, और चैतन्य उसमें बिंदु वो पिता है। वो बिंदु सदैव चैतन्य था, जिसकी सात्य के यादगार सोमनाथ के मंदिर में द्वापर के आदि में दिखाई गई। उससे पहले तो कोई सात्य की यादगार बनी नहीं थी। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग बनाया गया, जिसके बीच में हीरा रखा हुआ था, वो हीरा किसकी यादगार है? हैं? शिव की यादगार तो हो नहीं सकती, क्योंकि शिव स्वयं ही ब्रह्म वाक्य में बोलता है कि न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। मैं आत्मा तो हूँ, निराकार तो हूँ, ज्योति स्वरूप तो हूँ, हीरे के समान ही ज्योति स्वरूप नहीं कहेंगे, क्योंकि हीरा तो पत्थर है और शिव कभी पत्थर बनता ही नहीं। ज्योति वाना ज्योतिर्लिंगम तो हूँ, ज्योति का ज्योति स्वरूप तो हूँ, लेकिन ज्योतिर्लिंगम नहीं हूँ। क्या कहा? लिंग माने निशान, लिंग माने निशान नहीं हूँ। वो मैं वो यादगार नहीं हूँ जिसको तुम बच्चे याद करते हो। कौन से बच्चे? जो देह अभिमान छोड़ ही नहीं पाते, जो 80 साल के बाद भी कहते हैं बिंदी की याद स्थिर स्थिर रहती है। क्या कहते हैं? बिंदी निराकार की याद स्थिर नहीं रहती, 80 साल के बाद भी कहते हैं। तो सहज रास्ता बताया, इसलिए इस योग का नाम रखा गया सहज राजयोग। क्या रास्ता बताया? कि सूक्ष्म रूप छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो, परंतु पहचान कर याद करो कि वो बड़ा रूप कौन है जिसमें वो हीरा दिखाया गया यादगार में, जो पत्थर बुद्धि बनता है। हीरा पत्थर होता है ना? नौ रतन पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? पत्थर होते हैं, लेकिन वो कभी वो नहीं बनता पत्थर। वो जिस पत्थर बुद्धि में आता है वो पत्थर बुद्धि बनता है। कैसे बनता है? 5000 साल के बाद पत्थर बुद्धि बनता है कि जिस युग में आता है उसी युग के अंत में पत्थर बुद्धि बन जाता है? हैं? 5000 साल के बाद वो समय आता है जब वो पत्थर बुद्धि बनता है। कैसे बनता है? संघ के रंग से पत्थर बुद्धि बनता है। संघ का रंग उसको नहीं लगता, बाकी जो भी आत्माएं हैं प्राणी मात्र की, मनुष्य मात्र की, देवात्माओं की भी, सबको संघ का रंग लगता है। और खास दूसरे धर्म वालों को उतना नहीं लगता जितना भारत की जन्म लेने वाली मनुष्य आत्माओं को लगता है, भारतवासियों को लगता है। क्यों? क्योंकि भारतवासियों में जो मूल माता है कौन? परम ब्रह्म। वो माता है ना? पत्थर बुद्धि है या पारस बुद्धि है? हैं? पत्थर कैसे बनी? कैसे बनी? संघ के रंग में आते आते पत्थर बुद्धि बनी। जैसे औरों को संघ का रंग लगता है उसको भी संघ का रंग लगता तो जरूर है। हाँ, औरों को तेजी से लग सकता है क्योंकि औरों ने संगम युग में उतना ज्ञान नहीं उठाया और उस आत्मा ने ज्ञान जास्ती उठाया, पूरा भंडार उठाया ज्ञान का। तो जिसकी बुद्धि में ज्ञान होगा वो कर्म अकर्म विकर्म की गति को ज्यादा जानने वाला होगा या औरों के मुकाबले कम जानने वाला होगा? तो जिसकी आत्मा में ये शूटिंग हो गई, रिहर्सल हो गई, कर्म अकर्म विकर्म क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान उसकी बुद्धि में पूरी षष्ठी चक्र में भरा रहता है, सिर्फ लास्ट में संग के रंग में आते 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 आखिरी पत्थर गोदी बन जाता है। अब सवाल है कैसे बनता है? कोई आत्मा है गर्भ में जाके जन्म लेती है, लेती है ना, कोई कानी पैदा होती है, कोई बहरी पैदा होती है, कोई गूंगी पैदा होती है, कोई लूली पैदा होती है। कैसे हुई? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ऐसा जन्म मिला। आंखों से बहुत ही पाप किया, आंख लड़ाने का, विभिचार करने का, तो जिससे एक बार आंख लड़ गई, कन्या तो कोमल होती है, उसको सारी जिंदगी याद आती रहेगी, पाप तो बन गया ना। तो जो पाप बन जाता है और पाप के ऊपर पाप उसी जन्म में बनता ही रहता है, आदि हो जाता है, वो पाप ज्यादा न बढ़े तो अगले जन्म में अंधा होकर के पैदा हो गया, वो पाप बनेगा ही नहीं, भूल जाएगा, संग का रंग लगने का सवाल ही नहीं। तो देखो, ये आंख की जो इंद्रिय है वो इतना असर डाल देती है। ये ज्ञान इंद्रिय है ना, समझने की समझने का यंत्र है ना, आंख देखने का यंत्र है, कान सुनने का यंत्र है, जिभ्या बोलने का यंत्र है, नाक सूंघने का यंत्र है। तो यंत्र क्या हो गया है? बेकार हो गया। तो ज्ञानेंद्रियों से समझ की शक्ति खत्म हो गई, हो सकती है कि नहीं? ऐसे ही कर्म इंद्रियों से कर्म करने की शक्ति छीण हो जाए। तब जब कोई प्रकार की शक्ति नहीं रहती है, सारी शक्तियां जवाब दे देती हैं, आत्मा में ऐसे संस्कार भर जाते हैं कि वो अंतिम जन्म में आकर के सब प्रकार की जितनी भी शक्तियां हैं मनुष्य के अंदर, उन सभी शक्तियों से लुंजुम पुंजुम बन जाता है। क्या? लुंजुम पुंजुम जब बन जाता है, तब अंत समय में कहेंगे कि वो आत्मा सुधरने के काबिल नहीं रही, उस पे आप किसी का संग का रंग भी नहीं लग सकता, एकदम पत्थर बुद्धि हो गई। पत्थर बुद्धि आत्मा हो गई कि तन हो गया? आत्मा पथराती है तो तन की इंद्रियां नहीं पथराती है? तन के ऊपर असर नहीं पड़ता गर्भ में है? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। तो ऐसा पत्थर बुद्धि आत्मा में जो शरीर तैयार होता है अंतिम जन्म में, वो अंतिम जन्म की इंद्रियां ऐसी पथराए जाती हैं कि उसमें प्रवेश तो किया सुप्रीम सोल ने, अखूट ज्ञान के भंडार ने प्रवेश किया, तो वो जो बोलता है तो बोलने वाला कौन है? शिव। तो सुनने वालों को सत्य ही सुनाई देगा या उसके मुख से असत्य सुनाई देगा? सत्य सुनाई देता है, देखने वालों को सत्य ही दिखाई देता है, क्योंकि वो आता है तो तन को और तन की इंद्रियों को कंट्रोल करता है या नहीं करता है? अर्जुन के रथ को कंट्रोल किया ना, घोड़ों को लगाम लगाई ना, इंद्रियों को लगाम लगाए, वो घोड़ों को कंट्रोल किया ना, बुद्धि की लगाम अपने हाथ में ली ना, तो वो तन की इंद्रियों को कंट्रोल करता है। क्या मन को कंट्रोल नहीं करता, बुद्धि को कंट्रोल नहीं करता। मन हम में से किसी भी आत्मा को वो कंट्रोल नहीं करता। दीगर मनुष्य आत्माओं के न तन को कंट्रोल करता है, न मन बुद्धि को कंट्रोल करता है। हाँ, जिन बच्चों से उसे सेवा लेनी है उनमें प्रवेश करके अपना कार्य करके चला जाता है। किसी को पता नहीं पड़ता। तो साबित हुआ उसका सिद्धांत तो ये है कि स्वतंत्र रहो और आत्मा को स्वतंत्र रहने दो। तन को कंट्रोल किया और तन भी ऐसा कंट्रोल किया जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि, माउंट आबू का ग्रेनाइट पहाड़। दुनिया में एक ही पहाड़ है यादगार रूप में, जो जमीन के अंदर इतना गहराई तक गया है कि बड़े बड़े भूकंप जब आएंगे तो वो टस से मस नहीं होगा और दुनिया की बिल्डिंगें गिरती रहेंगी, वो अंत तक स्थिरियम रहेगा। अंत में जाकर के वो भी डाउन। इतना जबरदस्त और बड़ा पत्थर है। तो रही पत्थर बुद्धि की बात, क्योंकि पत्थर भी जमीन की चीज है। कहां से पैदा होता? जमीन से पैदा होता। लेकिन वो जो ब्राह्मण चोटी है, क्या यादगार है ब्राह्मण चोटी, कि जब जलमयी होगी तो सारी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अरब देश, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, चीन, जापान, ये सब जलमग्न हो जाएंगे। एक भारत ही बचेगा, भारत में भी जलमयी होगी। ऐसे नहीं भारतवासी जो है जिंदा रह जाएंगे शरीर से ही मृत्यु होती है। एक चोटी है दुनिया में जो जलमग्न नहीं हो पाएगी, कौन सी? एवरेस्ट, यादगार। तो बताया वो तो जड़ चोटी है, लेकिन जो चैतन्य चोटी है उसके लिए बताया ब्रह्म वाक्य मुरली में कि मैं जब आता हूं तो जब सारी दुनिया दलदल में डूब जाती है तो चोटी पकड़ करके खींचता हूं। क्या पकड़ के? कान पकड़ के नहीं, जो सुनने सुनाने वाला बड़ा कान दिखाया जाता है। क्या मुसलमानों में कहानियां बनी हुई हैं, तो उनमें एक ऐसा भी पार्टधारी है जो बड़े बड़े कान वाला दिखाया जाता है। अपने यहां बाबा ने वो कह दिया महारथी, हाथी रूपी, हाथी जैसा महारथी। गणेश को कैसा दिखाते हैं? बड़े कान वाला। तो बड़े कान का मतलब यह है ज्यादा सुनता भी है और ज्यादा सुनाता भी है। कौन सी आत्मा है जो ज्यादा सुनती भी है सुनाती भी है? है ब्रह्मा वाली आत्मा। उसो को पकड़ करके नहीं सारी सृष्टि को ऊपर उठाता, पांच विकारों की दलदल में से ऊपर नहीं उठाता। किसको उठाता? चोटी। तो जो ब्राह्मण चोटी है उस चोटी को पकड़ करके खींचता है। कैसे खींचता है? है ज्ञान की डोर से, ज्ञान की डोर से उसमें गांठ बांधी और उसमें शिवलिंग बना याद और खींचा तो सारी सृष्टि खींची, सृष्टि रूपी विराट पुरुष खींच के ऊपर आ जाता, उबर जाता, मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा जाता। तो वो ही बीज है जो सारी सृष्टि के उत्थान का भी कारण है और कलयुग के अंत में सारी सृष्टि के पतन का भी कारण। क्योंकि पहला शूद्र भी वो ही बनता है और आत्माएं जो शूद्र बनेंगी, क्षुद्र कर्म करने वाली बनेंगी, वो तो बाद में बनेंगी, पहले कौन? पहले वो संग के रंग में आकर के बड़ा शूद्र बनता है। पहले वो भी वैश्यों का बाप बनता है। तो फिर जो काम विकार का आदि है तो अंत कौन करेगा? वो जब ज्ञान को पूरा समझ जाता है, अपने स्वरूप को पूरा पहचान लेता है, तो उसी की जिम्मेवारी बनती है क्या? कामदेव को भस्म करना। कैसे भस्म करना? जैसे रामायण में कहा गया, विनु बप व्याप ही सब ही को हुई है काम अनंग। बप माने शरीर, बिना शरीर के सभी मनुष्य मात्र को, सभी देवात्माओं को, सभी प्राणी मात्र को व्याप्त रहेगा। शरीर से नहीं होगा वो काम विकार। बिन बपु व्याप है, बिना शरीर के व्याप्त रहेगा सत्युगत रितन। द्वापर कलयुग में उसको शरीर होगा, किसको? काम विकार को। तो द्वापर से ही काम आंगा अपना काम करना काम विकार का शुरू करता है। उससे पहले देवताओं को अनुभूति उस संग की होती ही नहीं, तो भस्म कर दिया। भस्म कर दिया माने राख बना दिया, अंश मात्र भी नहीं रहा, मन बुद्धि में भी नहीं रहा। तो ये बात ऐसे दिखाई है कि वो धर्म पिताएं या धर्म पिताओं के फॉलोअर्स या धर्म पिताओं की अम्मा, जिन की गोद में वो धर्म पिताएं आकर के प्रवेश करते हैं, वो प्रवेश जिनमें करते हैं वो धर्म की माताएं। इस्लाम धर्म की कोई माता होगी ना? कौन होगी जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है? वो इस्लाम धर्म की माता। जिसमें सिद्धार्थ में बुद्ध प्रवेश करता है वो बौद्ध धर्म की माता। तो जितने भी धर्म पिताएं हैं उनकी जो जो धर्म की माताएं हैं, वो माताएं सतयुग में जाकर के नारायण बनती हैं। कम कला वाली, वो कम कला वाली नारायण वाली आत्माएं ही ज्ञान की कमजोरी रह जाने के कारण, जैसे चंद्रमा में कम कलाएं होती हैं तो रोशनी कम हो जाती है, ऐसे ही रोशनी कम होने के कारण द्वापर युग से वो दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के चंगल में फंस जाती और कन्वर्ट होती रहती है। भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं, कोई दूसरे धर्म के कन्वर्ट दूसरे धर्मों में नहीं होते। कोई मुसलमान जो पक्का होगा मोहम्मद के बाद उतरने वाली आत्मा या इब्राहिम के बाद उतरने वाली आत्मा, वो कभी भी दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ को नहीं पकड़ेगी। गिरजाघर में नहीं जाएगी क्या? गुरुद्वारे में नहीं जाएगी। कहां जाएगी? है हाँ, वो मस्जिद में ही जाएगी। मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद में दीवार खड़ी होती है, तो जरूर संगम युग में कोई आत्मा हुई है जो ईश्वरीय ज्ञान के रास्ते में दीवार बन करके खड़ी हो जाती है। न खुद आगे पीछे होती, न दूसरों को आगे बढ़ने देती। जो एडवांस में ब्राह्मण हैं, वो जान गए होंगे कि बेसिक पढ़ाई जब पढ़ते थे तो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद कौन सी आत्मा ऐसी हुई जो एडवांस ज्ञान में दीवार बन करके खड़ी हो गई सारे ब्राह्मण परिवार के सामने, वो ही मिस जिद्द। मिस माने कुमारी, जिद्दी कुमारी। कैसी जिद्दी? जो माया रूपी रावण के लिए गायन है कि जानता था कि भगवान कौन है फिर भी मानता नहीं था, वो अंदर से समझ गई कि यही है, लेकिन फिर भी अड़ गई, जिद्द पकड़ गई, तो न खुद माना और न दूसरों को मानने दिया। इसी तरह हर धर्म का फाउंडेशन ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में पड़ता है, और हर धर्म का फाउंडर कौन है? हर धर्म का जो हर धर्म में धर्म पिताएं होते हैं, उन बापों का भी बाप कौन है? ग्रैंडफादर। कहते हैं ये भी एक परंपरा है दुनिया में कि बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन बाप के बाप डाडे का वर्षा तो जरूर देना पड़े। तो धर्म पिताएं अपना पूरा वर्षा धर्म गुरुओं के हाथ में देते हैं जो उनके गंदी नशीन बनते हैं, बाकी सामान्य पब्लिक को तो वो यथा राजा तथा प्रजा का सुख नहीं मिलता। जैसे राजा सुखी होता है ऐसे सारी प्रजा सुखी तो नहीं होती, लेकिन सारी प्रजा को, उन धर्म पिताओं की सारी ही फॉलोअर्स को, सारी प्रजा को वो बाबा जो कहा जाता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। धर्म पिताओं को कहते हैं ग्रेट फादर्स, महान धर्म पिताएं, लेकिन उन धर्म पिताओं का भी कोई बाप है जिनका वर्णन उन धर्म पिताओं ने अपने धर्म ग्रंथों में किया है, अपने धर्म में उनका वर्णन किया है कि कोई आदम था, कोई एडम था, या कि नहीं किया? तो वो एडम को वो नहीं जानते कि वो हमारा बाप था, सामान्य पब्लिक का ग्रैंडफादर था। वो सामान्य पब्लिक को जो और धर्मों के फॉलोअर्स बनते हैं उनको धर्म पिताएं सुख का वर्षा नहीं दे पाते पूरा, लेकिन जो डाडे है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसका वर्षा उनको जरूर मिलता है। हर आत्मा मनुष्य सृष्टि में मुक्ति और जीवन मुक्ति का जरूर वर्षा लेती है। किसके द्वारा लेती है? वो ग्रैंडफादर कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप, वो ग्रैंडफादर है। शिव बाप को ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं है। आत्मा आत्मा भाई भाई है, उसके सब बच्चे हैं, बाप बेटी का भी संबंध नहीं। उसकी कोई बेटी नहीं, सब आत्मा रूपी पुरुष है। एक टाइम ऐसा आता है हर मनुष्य आत्मा को अपना देह छोड़ करके आत्मिक स्वरूप में स्थिर होना ही पड़ेगा, उन आत्माओं का वो बाप है और वो आत्मा है सब पुरुष। शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली, कोई कहेगा कहां आराम से शयन करती है, दूसरे धर्मों की आत्माएं तो द्वापर युग से आती हैं, आराम तो क्या बे आरामी में ही रहती है बेचारी। नहीं, वो आता है तो हर प्राणी मात्र को आत्मिक स्टेज में पहुंचाता है, नंबरवार आप समान बनाता है। और जब वो आत्माएं संपन्न संपूर्ण आत्मिक स्टेज को धारण करती है, फिर जब परमधाम से आएंगी, क्या परम ब्रह्म से जब आएंगी, तो संपूर्ण स्टेज में आत्मा आएगी या कोई आत्मा अपूर्ण स्टेज में आएगी? हर आत्मा संपूर्ण स्टेज में आएगी, और पहले जन्म में सुख ही भोगेगी या दुख भोगेगी? है पहले जन्म में सुखी ही भोगेगी। तो सुख का वर्षा मिला या नहीं मिला? किससे मिला? शिव बाप से मिला। शिव बाप प्रैक्टिकल में रहता है, जब स्वर्ग तैयार होता है, स्वर्ग साकार है या निराकार है? तो साकार का रचयिता बाप भी साकार होगा या निराकार होगा? है साकार ही होगा। तो साकारी वो है जिसमें वो प्रवेश करता है, और साकार स्वर्ग रचने के लिए उसका नाम देता है मां, छोटी मोटी माता नहीं, ब्रह्मा, परम ब्रह्म। परम माने बड़ी, गीता में नाम आया महत ब्रह्म। क्या नाम? महत ब्रह्म। वो महत ब्रह्म है जिससे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को जन्म मिलता है। उस महत ब्रह्म को और परम आत्मा को, जो परमात्मा शब्द परम पिता के बाद ही बोला जाता है। कभी कहा जाता है परमात्मा परम पिता? क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा। क्यों? कि सब पिताओं का पिता तो एक ही है, उसका कोई पिता नहीं है, इसलिए वो परम पिता है। पुरुष माने आत्मा, जितनी भी आत्माएं हैं उन आत्माओं में परम पुरुष, ऐसा पुरुष रूपी आत्मा जो ऐसा परम पार्ट बजाता है कि सदा काल जब तक पार्ट बजाता है आराम से, श पुरुष, श माने शयन करने वाला, आराम से ही शयन करता है, बे आरामी कभी महसूस करता ही नहीं। कौन 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 आत्मा? शिव, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, औरों के शरीर का नाम पड़ता है और उसके बिंदी का ही नाम शिव है। मनुष्यों में जो बीज रूप आत्मा है, जो अव्वल नंबर में मनुष्य पार्टधारियों के बीच बिंदु रूप धारण करती है, वो आत्मा भी क्या है? सदाकाल आराम से शयन करने वाली है रंगमंच पर। पुरुष है सदाकाल, सदाकाल के लिए माने तीनों काल के लिए वो पुरुष अब्बल नंबर का है, परम पुरुष है, है। अरे शा माने शयन करने वाला, आराम करने वाला है, है? नहीं है, है? हाँ, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर उस आत्मा को तो सबसे जास्ती संघर्ष करना पड़ता है। किसके साथ? विधर्मियों, विदेशियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। द्वापर के आदि से ही अलेक्जेंडर जैसे विदेशी आए, आक्रमण किए, भारत में अत्याचार किए, बहू बेटियों को, बीवी बाल बच्चों को उठा उठा के ले गए और उनके साथ संघर्ष करके उनको सर पे पांव रख करके भागने के लिए किसने मजबूर कर दिया? उसी संघर्ष करने वाली आत्मा ने मजबूर कर दिया। सिर्फ द्वापर में ही नहीं, कलयुग में भी ऐसे ही होता रहा। चाहे कितना भी बड़ा सम्राट बनकर के बैठा हो इंडिया में, तो भी ऐसी आत्माएं राजा के रूप में हुई भारत में, क्यों? उन सम्राटों ने कभी भी उनको मात नहीं खिलाई, उनसे हारते रहे, मात खाई लेकिन मात खिलाई नहीं कभी। जैसे राणा प्रताप, जैसे शिवाजी, छोटे छोटे राजाएं थे ना, छोटी सी मिलिट्री होती थी उनकी, हजारों की तादाद में मिलिट्री, लाख की आधी भी नहीं कभी कभी, और उनकी लाखों की तादाद में मिलिट्री, क्या लाखों की तादाद की सेना लेकर आते थे और उल्टे पांव भाग जाते थे। ये कौन सी ताकत है? हाँ, ये संघर्ष करने की ताकत है सच्चाई के बल पर। क्या सच्चाई? सच्चाई ये है कि अपने अपने राज्य में राज्य करो, क्या अपने घर में राजा बनकर के रहो, दूसरे के घर में इंटरफियर मत करो। राजा बन के बैठ गए ना, तुम्हें बाप से राजा ही मिल गई ना, उस राजा ही को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण मत करो। आक्रमण करना, आतताई बनना, डकैती करना, आगजनी करना, ये इंसानियत? इंसानियत नहीं। इन माने अंदर शान, माने आत्मिक स्थिति की शान में रहने वाली बात नहीं है। रूह नहीं हो तुम, तो हैवान बन गए। तो ये बात सच्चाई की बात है। उस सत्यता को हर जन्म में जो धारण करता है और झूठों से जन्म जन्मांतर टकराता है, उसका नाम संसार में रंगमंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। जो हीरो पार्टधारी है वो जन्म जन्मांतर हीरो पार्ट ही बजाएगा या जीरो पार्ट बजाएगा? हीरो पार्ट ही बजाता है। साहित्य के क्षेत्र में बजाएगा तो भी वाल्मीकि और तुलसीदास जैसा ही पार्ट बजाएगा। ब्रह्म वाक्य में ये सच्चाई बोली गई है, क्या अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी? तो बताओ, वाल्मीकि ने जो राम की कथा रामायण लिखी, वो वाल्मीकि कौन सी आत्मा हुए? कलयुग में तुलसीदास ने रामायण लिखी, वो तुलसीदास कौन सी आत्मा साबित होती है? रामवाली आत्मा साबित होती। तो तुलसीदास ने लिखा, रामायण में लिखा, वाल्मीकि ने, उन्होंने संस्कृत में लिखा वाल्मीकि ने, क्योंकि उस समय संस्कृत ही बड़ी प्रचलित थी। और तुलसीदास ने वाल्मीकि की तरह संस्कृत में नहीं लिखा, क्योंकि आज से 400 वर्ष पहले हिंदुस्तान में हिंदी ही ज्यादा बोली जाती थी। क्या मुसलमान आए तो थोड़े उन्होंने उर्दू मिक्स कर दी, तो उर्दू मिक्स हिंदी बोलने लगे। तो तुलसीदास ने नई परंपरा शास्त्रों की शुरू कर दी, उन्होंने हिंदी में रामायण महा क्या नाम पुराण लिखा। और जितने भी भारत के संस्कृत के विद्वान थे उन सब ने खूब जोर से बुराई की, ग्लानी की, और उन्होंने ग्लानी को सहन किया, मुकाबला किया, किसी की बात मानी नहीं। और उस समय तुलसीदास को किसी ने नहीं माना, और आज देखो जो भी हिंदी भाषा भाषी हैं, उनके दिल और दिमाग पर कौन सा ग्रंथ, कौन सा पुराण छाया हुआ है? रामायण, तुलसीकृत रामायण ही छाई हुई, और उसमें कितनी गहराई भरी हुई है। वो रामायण का एक चौपाई है, वो रामायण ग्रंथ लिखने वाला कहां तक पहुंचा हुआ है, वो जो असली वेदवाणी है, उन वेदों की बात नहीं कर रहे हैं जो मनुष्यों ने ऋषियों ने लिखे थे, वो भगवान ने नहीं लिखे, ब्रह्मा ने नहीं लिखे, उनमें नाम पड़ता है वेद व्यास, दाढ़ी मूंछ वाला मनुष्य था, वेदों का नाम के पीछे वेद व्यास जुड़ा हुआ है। हम उन वेदवाणी की बातें कर रहे हैं जो स्वयं भगवान आकर के जिसमें प्रवेश करते हैं, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, उस ब्रह्मा के मुख से निकली असली वेदवाणी की बात कर रहे हैं। उस वेदवाणी में है ये बात जो तुलसीदास जी ने बताई थी, जे ही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम्हें ही हुई जाई। किसने बोला? तुलसीदास ने बोला। किसको बोला? अपने भगवान को बोला। क्या बोला? बोला जे ही जानो हो, तुम जिसको जानते हो, तुम जिसको जानते हो, जे ही जानो ते ही देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो। वो खुद जानकार नहीं है, वो अज्ञानी है, लेकिन तुम उसको जानते हो। अज्ञानी तो सारा संसार है, लेकिन तुम सारे संसार का तुम्हारे से कनेक्शन नहीं है। क्यों? कि सारे संसार की जो भी प्राणी मात्र हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, वो तीनों कालों में चक्कर नहीं लगाती, और तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तो तुम्हारा कनेक्शन किससे है? उस आत्मा से है जो तीनों कालों में चक्कर लगाती है, तो तुम जानते हो उसको, लेकिन वो तीनों कालों का चक्कर लगाने के बाद पत्थर बुद्धि बन गई, वो अपने को नहीं जानती। तो वो आत्मा कलयुग में मध्य में जाकर तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर के भी इतनी ज्ञानवान है कि वो असलियत को जान रही है। क्या? यही जानो ते ही देव जनाई, तुम जिसको जानते हो 100% अच्छी तरह से, उसको तुम ज्ञान देते हो, जानकारी देते हो। क्या जानकारी देते हो? अपनी भी जानकारी देते हो और उसको अपनी भी जानकारी अनेक जन्मों की देते हो। क्या नहीं समझ में आया? जे ही जानो, तुम जिसको जानते हो, तुम माने भगवान, जिसको जानते हो, जिसको माने तुम जिसको जानते हो, इसको जिसको जानते हो और किसी को इतना नहीं जानते, जानते हो इसलिए तुम त्रिकालदर्शी हो। तो तुम जिसको जानते हो उसको तुम ही जानकारी देते हो। क्या जानकारी देते हो? कि तू कौन है और मैं कौन हूं। तुम अपनी भी जानकारी देते हो और उसको अपने भी आत्मा के अनेक जन्मों की जानकारी देते हो। और फिर क्या होता है? जानत तुम ही हुई जाई। वो जब जान जाता है, जानकारी ले लेता है, तो जानने के बाद वो जानत माने जानते हुए तुम ही, तुमको पूरा जानते हुए तुम जैसा ही हो जाता है। जानत तुम ही हो जाई। यही बात शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मवाक्य की मुरली में, कि मैं जब आता हूं तो तुमको आप समान बनाता हूं, सबको आप समान बनाता हूं कि नंबरवार बनाता हूं? तुमको आप समान तो बनाता हूं लेकिन नंबरवार बनाता हूं। तो जो अब्बल नंबर बनता है, अब्बल नंबर बाप समान बनता है, समान माने त्रिकालदर्शी, समान माने त्रिकालदर्शी। तो हर आत्मा उतनी ही दर्शी बनेगी जहां तक उसने जन्म लिए है, कि उससे ज्यादा बन जाएंगी? इब्राहिम को जो जानकारी मिलेगी वो द्वापर युग के आदि तक की जानकारी मिलेगी ना आत्मा को, उससे पहले क्या होता है सृष्टि में उसको जानकारी नहीं होती, नहीं जानकारी होती, इसलिए वो स्वर्ग में संतान पैदा करने की क्या परंपरा होती है वो जानता है?
नहीं जानता।
कि ज्ञानेंद्रियों के सुख से वहां संतान पैदा होती है वो जानता ही नहीं, इसलिए उस आत्मा को लाख कोई समझाए कि ऐसी भी सृष्टि होती है जहां कर्मेंद्रियों से कामेंद्रिय से संतान पैदा नहीं होती, वो इस बात को मान, उसके फॉलोअर्स भी नहीं मानेंगे। तो ये बात सच्ची है कि तुम जिसको पूर्ण रूप से 100% जानते हो, तुम माने तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम जिसको जानते हो तीनों काल के रूप में उसको तुम जानकारी दे देते हो, उसकी अपनी भी जानकारी देते हो कि तुम तीनों काल में इस सृष्टि पर क्या हो? अविनाशी हो। तुम अविनाशी हो इसलिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रिहर्सल काल में जब आता हूं मैं, तो अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड की रचना करता हूं। कैसा ज्ञान? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसका कभी विनाश होता ही नहीं। तो जब यज्ञ का विनाश नहीं हो सकता, तो जो रुद्र नाम पड़ा, यज्ञ का नाम पड़ा, क्या पड़ा? रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो जो रुद्र के द्वारा यज्ञ शुरू हुआ उसका विनाश होगा, वो भी अविनाशी, ज्ञान भी अविनाशी और ज्ञान दाता भी अविनाशी। तो वो त्रिकालदर्शी तीनों काल में पार्ट बजाने वाले को आकर के ज्ञान देता है। अखूट ज्ञान का भंडार देता है, मनुष्य सृष्टि में मनुष्य मात्र में जो सबसे बड़ा मनुष्य है, लंबे ते लंबी आयु वाला, उस बड़े बच्चे को ज्ञान देता है, वर्षा देता है। निराकार आत्माओं का निराकार बाप निराकार बच्चों में से अव्वल नंबर जो आदम कहा जाता है, एडम, उसको आकर के ज्ञान का वर्षा देता है। दूसरा कोई जान ही नहीं सकता कि ज्ञान क्या है। बेसिक में जानेंगे हम आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, बस खत्म। कौन सी आत्मा ये कोई नहीं जान सकता। 80 साल हो गए अभी भी कोई नहीं जानता। वो एक जानेगा, अपने को भी जानेगा और अपने बच्चों को भी। जैसे एलजेब्रा में वो बताया जाता है ना, है फार्मूला बताते हैं, ऐसे फार्मूला बताता जाएगा और सबके एक जन्म खुलते जाएंगे। ओम शांति।